अलौकिक परिचय करना है तीन बातों पर, ज्ञान में कितने साल से हैं, बाबा के ज्ञान की कौन सी बात अच्छी लगी जो आप इस ज्ञान में चल रहे हैं, और आज की मुरली की एक पॉइंट बतानी है। तो चलो शुरू करो, जिसको नहीं पहचानते हैं उनसे मिलना है, हाथ मिलाइए, आगे पीछे आसपास देख लीजिए। जो तीन बात कही है उसी पर बातचीत करनी है, जिनकी बात हो जाए वो बैठते जाए। बहुत अच्छा, जो तीन बातें मैंने बताई, ज्ञान में कितने सालों से चल रहे हैं, बाबा के ज्ञान की कौन सी पॉइंट अच्छी लगी जो आप बाबा के बन गए, और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, एक पॉइंट। ये तीन पॉइंट पर, सिर्फ तीन पॉइंट पर जिसकी बातचीत चली वो खड़े हो जाएं, सिर्फ तीन पॉइंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी जो बैठे हैं वो ताली बजाओ। बहुत अच्छा, तीन पॉइंट पर ही बात चली, और कुछ भी नहीं आगे पीछे। हाँ, और कुछ चली हो तो बैठ जाना। हाँ, बहुत अच्छा, ये अपने कार्य में एकाग्र रहे हैं, बैठिए। तीन पॉइंट के अलावा और भी बात की वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। नाम पूछा होगा, कहां से आए वो पूछा, कुछ भी। तीन पॉइंट के अलावा जिनकी बातें चली, वो थोड़ा अपने जो कार्य मिला उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। क्या क्या पूछा, और नाम पूछा, शहर पूछा। ठीक है, बैठिए। जिन्होंने बात ही नहीं की वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जिन्होंने बात ही नहीं की खड़े हो जाइए, अच्छी तरह खड़े हो जाइए, बाकी बैठ जाएं। जिन्होंने बात की ही नहीं, भाई क्यों नहीं की? हाँ, क्यों नहीं की? ठीक है, बैठे। देखो तीन प्रकार के मिल गए ना। हमने तो सबसे कहा, हाँ, किसी ने टू दी पॉइंट बात की, किसी ने और भी बात की, और किसी ने बात ही नहीं की। देखो तीन वैरायटी है ना यहाँ भी। अभी हम टॉपिक पर आएंगे। एकाग्रता, भारी तो नहीं लग रहा विषय? एकाग्रता और इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या अर्थ है? इकोनॉमी का अर्थ कौन बताएगा? हाँ, हाँ, कम खर्च करके बैलेंस कर, वही जमा कहो बचत कहो, बचत इकोनॉमी, कम खर्च और बचत। विषय समझ में आया है? हाँ बोलो। इकोनॉमी मीन्स, हाँ आवाज से बोलो, हाँ वो नहीं, मैं डिटेल नहीं पूछ रही, शब्दार्थ पूछ रही थी। हाँ बताओ। हाँ एक नामी शब्दार्थ, इकोनॉमी इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सिंपल, हाँ अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेज में, ये सब्जेक्ट आता है ना, पहले पॉइंट पर आते हैं एकाग्रता। कोई भी कार्य में सफल होना है तो उस कार्य के प्रति एकाग्रता चाहिए। कोई भी कार्य है ना, जैसे हमने छोटा सा काम दिया ना अभी, तो कोई भी कार्य, लौकिक अलौकिक, कोई भी जीवन का कार्य, तो सबसे पहले तो मुझे चुनना है, सिलेक्ट करना है कि मुझे अपने जीवन के लिए कौन सा कार्य लेना है, है ना। एकाग्र कहाँ होना है, पहली बात तो ये है। दुनिया में भी लोग एकाग्र होते हैं, है ना, कोई पढ़ाई में एकाग्र है, कोई बिजनेस में एकाग्र है, कोई गृहस्थ जीवन में एकाग्र है, कोई अपनी कला में एकाग्र है। एकाग्र तो हर क्षेत्र में लोग होते हैं, और एकाग्र हुए बिगर सफल हो नहीं सकते हैं। पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि मुझे कहाँ एकाग्र होना है। डायरी पेन लाए है ना, पहला प्रश्न लिखो। मुझे एकाग्र कहाँ होना है, किस में होना है, है ना? इसमें ही हमारी दिव्य बुद्धि शुद्ध बुद्धि ज्ञानयुक्त बुद्धि का परीक्षण हो जाता है। तो उसका एक सेकंड अंतर्मुखी बनकर खुद उसका उत्तर लिखो अपनी डायरी में। आपका अपना जवाब क्या है, मुझे कहाँ एकाग्र होना है? हम सभी ज्ञानी तु आत्माएं, मैं मान लेती हूँ सभी भट्ठी में आए हैं, मीन्स ज्ञानी तु आत्माएं हैं। हमने बाबा के सत्य ज्ञान को समझा है ना, तभी आप यहां तक बढ़े हैं। न समझा हूं तो हमारा पहला कर्तव्य है बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बिना समझे आप एकाग्र हो नहीं सकेंगे, चूज नहीं कर सकेंगे। जीवन के अनेक पहलू हैं, एस्पेक्ट हैं, जीवन में अनेक क्षेत्र है, मुझे कहाँ एकाग्र होना है। इसलिए हम ज्ञानी तो आत्मा है सभी, वो समझ कर ही मैं इस विषय पर आगे बढ़ूंगी। हमने सत्य को जान लिया है तो हाथ ऊपर करें। अगर ये स्पष्ट है कि हमें स्वयं भगवान ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान दे रहा है, वो सत्य ज्ञान मुझे मिला है, ये परख है, निश्चय है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है ना, बाप कौन है, अगर ये निश्चय है तो संशय रहेंगे नहीं, अल्टरनेट रहेगा नहीं। अगर बुद्धि में अल्टरनेट है, विकल्प है कि बाबा भी है, ये भी है, वो भी है, माना हमने समझा रही है, निश्चय रही। पहले इस फाउंडेशन को आप पक्का करेंगे। अगर वो फाउंडेशन कच्चा लेकर आए हैं तो उससे पहले पक्का करेंगे। हम भाग्यशाली हैं जो हमें सत्य ज्ञान का संपर्क हुआ है ना? जरूर हमारे पुण्य का खाता जमा है, तब तो हम इस पवित्र भूमि पर पवित्र आत्माओं के संगठन में आए हैं। इसलिए सबसे पहला स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं और वो संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। अब आप सोचे मुझे कहाँ एकाग्र होना है, मुझे किस में एकाग्र होना है। दुनिया सत्य को नहीं जानती है, उनको नहीं पता है परमात्मा आया है, तो नेचुरली वो कोई भी क्षेत्र चुनेंगे लाइफ के लिए। हमें सत्य पता है इसलिए हम सब ने अपने जीवन के लिए ये चुना है, फाइनल किया है कि हमें इस ज्ञान में चलना है। इस जीवन को आध्यात्मिक जीना है। ये फर्स्ट बात मैं कर रही, मैं समर्पित की बात नहीं कर रही हूं। पहली बात, मुझे अपना जीवन आध्यात्मिक जीना है। कहते हैं ना, जीने के दो मार्ग हैं, योग मार्ग और भोग मार्ग। योग मार्ग श्रेय मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग। भोग मार्ग प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग माना जो अच्छा अच्छा लगे वो करना। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, माना वो करना। सत्य है या नहीं वो बात नहीं है उसमें। भोग मार्ग माना इंद्रिय रसों का मार्ग। भोग मार्ग माना इंद्रिय रसों को भोगना, देखने का शौक, सुनने का शौक, पहनने का शौक, खाने का शौक, बोलने का शौक, ये इंद्रिय रस है ना। ये सब इंसान का जीवन उसी में पूरा हो जाता है। खाना पीना, सोना पहनना, ओढ़ना, देखना, बोलना, है ना, उसी प्रवृत्ति इन्हीं रसों में पूरा हो जाता है। अगर हमने ये निर्णय किया है, समझ लिया है कि मुझे ये जीवन आध्यात्मिक जीना है, योग मार्ग पर जीना है, पवित्र योगी जीवन बनाना है, अगर ये फैसला है तो मुझे उसी में एकाग्र होना है। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर आप लिखो, मुझे कहाँ एकाग्र होना है, किस में एकाग्र होना है। व्यक्ति लक्ष्य के बिना एकाग्र नहीं हो सकता। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है। पढ़ना है, ये सीखना है, वो कैरियर की बात है, लाइफ की बात नहीं है, है ना। वो तो जीवन में पढ़ना है, सीखना है, दुनियावी रूप से कई बातें, वो तो आप कोई भी प्रोफेशन के हिसाब से वो सब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। कि इंसान इस दुनिया में आया है तो वो इस दुनिया को जानेगा, समझेगा, सीखेगा, पढ़ेगा। तो कोई भी है ना लाइन आप चूज करेंगे, पर वो लाइफ की बात नहीं है, वो तो पढ़ाई प्रोफेशन की बात है। जीवन कैसा जीना है, डॉक्टर बन के भी जीवन कैसा जीना है, इंजीनियर बन के भी जीवन कैसा जीना है, कुछ भी जो भी आप पढ़ते हैं सीखते हैं, अपने हाथ से उत्तर लिखेंगे ताकि पक्का भी रहेगा, याद भी रहेगा, रिवाइज भी कर सकेंगे। क्योंकि जीवन का लक्ष्य खुद चुनना होता है, वो किसी के कहने पर नहीं चुन सकते। कैरियर के बारे में हो सकता है कि वे फादर कहेंगे मेरी प्रैक्टिस की हुआ बैकग्राउंड बना है, तुम वो ही बनो। वे पिताजी डॉक्टर है तो उसकी तैयार प्रैक्टिस पर आप बैठ सकते हैं, आप वही पढ़ो तो अच्छा है, ऐसे माँ बाप कह सकते। पर मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है, वो व्यक्ति को खुद डिसाइड करना होता है। कि मुझे अपनी जीवन कैसे जीनी, तो ज्ञानी तू आत्मा बनकर फिर उसका उत्तर लिख। क्योंकि ये एज है, मुझे लगता है इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वाली ही अधिकतर बहने होंगी, और ये एज है, आयु है शरीर की, आपके जीवन की, जीवन का लक्ष्य और मार्ग स्पष्ट हो जाना चाहिए। ताकि हम उलझते न रहे, हमारे पीछे हमारे माँ बाप उलझते न रहे। और हमारा टाइम एनर्जी ऐसे ही पास न होते रहे। आज के समय में हम लोगों के समय में कहते थे कि 16 वर्ष की आयु पर विवेक डेवलप हो जाता है, व्यक्ति खुद निर्णय कर सकता है। आज के समय में 12 वर्ष की आयु पर व्यक्ति वेल इन्फॉर्म्ड हो जाता है, वो खुद डिसीजन ले सकता है। एडवांस है नहीं, अभी कौन सा युग है, एडवांसमेंट का युग है ना, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अनुभव है हम लोगों का कि लक्ष्य निश्चित हो जाने से अपने आप पूरी एनर्जी उस एक दिशा में लगने लगती है। फिर भटकना समाप्त हो जाता है। जब तक लक्ष्य फाइनल नहीं हो जाता जीवन के लिए, तो भटकता रहता है। और उसमें हमें बहुत क्लियर स्पष्ट रहना चाहिए, ताकि ना हम घूमते रहे ना माँ बाप को घुमाते रहे। कई बार कई प्रवृत्ति, कई एक्टिविटी सिर्फ टाइम पास के लिए हम करते हैं, क्योंकि लक्ष्य क्लियर नहीं है। परंतु हम बाबा के बच्चे, हमें सत्य ज्ञान मिला है, हर बात का सत्य हमें पता है। रोज की मुरली में बहुत साधारण भाषा में, सरल शब्दों में मूल सत्य बाबा बताते हैं। अगर हम ध्यान से सुने, समझे, तो जीवन की बहुत मूल बातें बाबा हमें बताते हैं। और आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही जीवन का लक्ष्य निश्चित हो जाता है, आप ऑटोमेटिक फोकस हो जाएंगे। अपने आप एकाग्र हो जाएंगे। फिर जीवन का कोई भी कार्य हो, पढ़ाई का हो, कार्यक्षेत्र का हो, फैमिली लाइफ का हो या पर्सनल लाइफ का, आप हर कार्य में फोकस रहे। यही बाबा के ज्ञान की विशेषता है कि बाबा ने ऐसा बीज पकड़ा है, जैसे बीज को क्वालिटी बनाने से अपने आप पूरा वृक्ष हर डाल, पत्ते, कली, फल सब क्वालिटी बन जाता। हम स्वयं, जीवन किससे जुड़ा है? मुझसे, मुझ आत्मा से। जीवन का संबंध मुझ चैतन्य से। और बाबा हमें ठीक करके सारा विश्व ठीक कर लेता है। दूसरी बात, कई बार सत्य मिल गया, मिल जाता है, हम सबको मिल गया, सत्य समझ में भी आ जाता है, लेकिन हमारी अपनी पर्सनालिटी और बाबा का ज्ञान मैच नहीं करता है। कई बार मैच नहीं करता है। हमारी बैकग्राउंड पर्सनालिटी, पहले का जीवन, संस्कार, आदतें, लाइफस्टाइल अलग होते हैं और बाबा का ज्ञान सत्य है वो समझ में आ भी गया है। नेचुरली हमें काफी परिवर्तन करना पड़ता है। वहां खुद के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार समझते हुए भी हम उस लक्ष्य में एकाग्र नहीं हो पाते। होता है ऐसे, होता है ना ऐसे? कई संस्कार, कई आदतें ज्ञान से पहले के जीवन की अलग है। भाई सुबह उठने की आदत, समझ में आ रहा है कि जल्दी उठना चाहिए, बाबा राइट कहते, पर आदत कौन सी है? देरी से उठने की। तो नेचुरली क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना खुद के पीछे। तो हम लक्ष्य में एकाग्र नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक है कि लक्ष्य को मजबूत करने के लिए हमें बहुत कुछ परिवर्तन करना है। उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। वे हम पुरुषार्थ करते हैं, किस चीज का परिवर्तन करते हैं। लक्ष्य निश्चित होने के बाद दिनचर्या रिसेट करना पड़े। दिनचर्या को रिसेट करना पड़े। पहले लक्ष्य ही नहीं था, खाया पिया सोया, है ना? देरी से सोए, देरी से उठे, एक ही बात मैं तो बता रही हूँ, दिनचर्या में क्या क्या आता है सब आपको पता है। पर लक्ष्य निश्चित करने के बाद उसमें एकाग्र मुझे रहना है और उस लक्ष्य को साकार करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो मुझे दिनचर्या को रिसेट करना है। मेहनत लगेगी, तकलीफ होगी, पर हो सकता है। दूसरा, एकाग्रता सिर्फ मन की बात नहीं, टोटल लक्ष्य में एकाग्र होने की बात भी। अभ्यास, चाहे योग अभ्यास कर रहे हैं, मुरली स्टडी कर रहे हैं, उस समय एकाग्र होने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन मुझे टोटल लक्ष्य में एकाग्र रहना है कि किसी भी हालत में लक्ष्य बदले नहीं, लक्ष्य कमजोर न बने, लक्ष्य साधारण न हो जाए, वो सदा मुझे एकाग्रता बना के रखे। कहते हैं वे शुरुआत तो बड़े उमंग से करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे हो जाते, ऐसे नहीं। लाइफ की बात है, हम कहते हैं ना, हम एक दो घंटे के योगी नहीं हैं, हमारा योगी जीवन है। बाबा कहते हैं जीवन माना सदा निरंतर। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे रोज मैं दो घंटे जीती हूँ बाकी आठ घंटे, नहीं, जीना माना जीना। हम योगी जीवन बना रहे हैं, इसलिए हमें निरंतर लक्ष्य में एकाग्र रहना होगा। और इसलिए लक्ष्य के अनुरूप दिनचर्या, लक्ष्य के अनुरूप संग, संग कंपनी, हमारा संग किसके साथ है, कहते ना अच्छे घर के बच्चे भी खराब संग में बिगड़ जाते, घर के दिए हुए अच्छे संस्कार भी खत्म हो जाते, संग का इतना प्रभाव है। अगर सच में लक्ष्य है जीवन श्रेष्ठ बनाना है, तो मुझे उसके अनुरूप संग करना है। अच्छा, स्कूल कॉलेज में तो जैसे हैं उनके साथ ही पढ़ना है, उठना है, बैठना है। तो आप में वो कला चाहिए, एक तो मुझे किसके संग में रहना चाहिए और किसके संग में नहीं रहना चाहिए, ये परख पहली बात, ताकि जितना नहीं रहना चाहिए उसको दूर कर सके। और दूसरी बात कि संग में रहते भी रंग न लगाएं, ये आल्टा दीजिए। कि ठीक है, क्लास में तो हर प्रकार के विद्यार्थी होंगे, मिलेंगे, है ना, उनके साथ हमें प्रोजेक्ट भी करने होंगे, है ना, सब एक्टिविटी भी करनी होंगी, आना जाना होगा, बैठना होगा, पर मुझे किसका रंग लगाना है और किसका नहीं लगाना है, ये कला चाहिए। क्योंकि वो तो जीवन के हर लेवल तक ये बात आएगी, है ना। आज हम यज्ञ निवासी है तो भी हमारे आगे भी वैरायटी प्रकार के लोग आते हैं। हमें कोई एक कोने में गुफा में बैठ के अच्छा जीवन नहीं बनाना है, हमें तो दुनिया के बीच रहकर जीवन बनाना है। तो दो सिचुएशन होती है, फर्स्ट, पहली जो मैंने बताई कि लक्ष्य ही नहीं बना पाते हैं, सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, परख नहीं पाते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, क्या कल्याणकारी है, क्या नुकसानकारी। आज की जनरेशन दुनिया में क्यों कंफ्यूज है, क्यों विवरिंग है, कारण ये एनालिसिस पैरालिसिस, एनालाइज नहीं कर पाते। 10 प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल गई मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर, फलाना, जो भी है आजकल, पर राइट कौन सी, रॉन्ग कौन सी, उपयोगी कौन सी और वेस्ट कौन सी, कल्याणकारी कौन सी, नुकसानकारी कौन सी, वो परख नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उस हिसाब से हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा का सद्ज्ञान सद्बुद्धि देता है। बाबा के ज्ञान से विजडम आता है। अगर हम ज्ञान अच्छी रीति समझते हैं, हम कंफ्यूज हो नहीं सकते हैं, हमें सेकंड में परख आ जाएगी ये राइट है या रॉन्ग है। मुझे कहां तक इसको अपनाना चाहिए, कहां नहीं अपनाना चाहिए, हम एनालाइज विश्लेषण कर सकेंगे। तो दुनिया में जो युवा भाई बहने हैं, जिन्होंने अभी दुनिया की ठोकरें खाई नहीं है, है ना, जो ग्रस्ती है वो तो बेचारे ठोकर खा के सीधे हो जाते परिवार संबंध में बंधने से ऐसे अनुभव होते हैं कि अपने आप ठीक होते हैं फिर। पर उससे पहले जो कुमार कुमारियों की जीवन है, युवाओं की जीवन है, बाबा का ज्ञान हमें बहुत मदद कर पर अच्छा ज्ञान का स्टडी चाहिए। तो हमारे में परख शक्ति आएगी, विवेक हमारा विकसित होगा, हम मुंझ नहीं सकेंगे। ये विषय एकाग्रता क्यों रखा? क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड है, विवरिंग माइंड है। अभी अभी ये चूज करेंगे और अभी अभी बदल जाएंगे। मैंने कहा तो मेरे जैसे बनेंगे, इसने कहा तो इनके जैसे बन जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि खुद का विवेक इतना स्पष्ट नहीं है कि मुझे कोई कंफ्यूज न कर सके। पर हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, नित्य मुरली अध्ययन करने वाले हैं, हमें जीवन का लक्ष्य निश्चित करने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए और टाइम नहीं लगाना चाहिए। टाइम नहीं लगाना चाहिए। और फिर दूसरा, एक है लक्ष्य ही निश्चित नहीं कर पाते हैं, मन भटकता है, बदलता रहता है, मूंझता रहता है। उसके कारण उनकी अपनी भी बहुत कुछ एनर्जी वेस्ट, परिवार की भी वेस्ट, माँ बाप की सबकी वेस्ट होती है। और दूसरा है कि लक्ष्य निश्चित करने के बाद एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, उसमें दृढ़ता चाहिए, फोकस होना चाहिए। जब तक कि वो लक्ष्य साकार हो जाए, घड़ी घड़ी सपने बदले नहीं, बहुत मेहनत होती, बहुत एनर्जी जाती। पहले लोग अनपढ़ थे, आज के समय है ना, आज से 80-100 वर्ष पहले की बात करें, इतना कहां बहने पढ़ती थी। पर इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं थे मैरिड लाइफ के, है ना? माँ बाप ने जिससे जोड़ा जीवन भर निभाते थे। क्यों? बुद्धि नहीं थी, क्वालिटीज थी, गुण थे। वास्तव में सब कुछ चाहिए, बुद्धि भी बाबा ने दी, क्वालिटीज भी हों ताकि हम उस लक्ष्य में एकाग्र रहें। और एकाग्र रहने के लिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूं, एक दिनचर्या, दूसरा संग। हम खुद ऐसा संग क्यों करें जो हमें लक्ष्य से उखाड़ते रहे, है ना, ढीला करे, कमजोर करे, ऐसा संग ही हम क्यों करें जानबूझकर। और गांधी जी ने कहा है अपने एक चिंतन में कि जो भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं उनका अपना खास कोई मित्र नहीं होगा, सारा विश्व उनका मित्र होगा। क्योंकि जो खास होते हैं वही दगमग करते हैं, वही बुद्धि को बदलते रहते हैं। कोई योग्य हो खास तब तो ठीक है ना, पर आज की दुनिया में कहां मिलेगा। दूसरा, हमारी एक्टिविटीज प्रवृत्ति ऐसी हो दिन भर की जो लक्ष्य को मजबूत करने वाली। हम बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, पर लक्ष्य के अनुरूप वो हो। नहीं तो लक्ष्य के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। कई बार हम ओवर एक्टिव हो जाते हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी, जरूरत से ज्यादा बातें हम सीखते हैं और फिर कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किसी में मास्टरियाती नहीं है फिर, क्योंकि हमने कोई एक में फोकस नहीं किया, 10 सीखने में कोई एक में हम मास्टर बने ही नहीं, स्पेशलिस्ट बने ही नहीं। भाई हमने 5-5 फीट 10 जगह खोद लिए, पर एक ही जगह 50 फीट खोदते तो पानी निकलता। सिर्फ एक्सपांशन नहीं, डेप्थ। कोई एक चीज पकड़ो पर मास्टर बनो। हमने देखा कोई 12th में कोई सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में दूसरे और पोस्ट ग्रेजुएशन में दूसरे, ऐसा नहीं। नॉलेज आएगी पर मास्टरी नहीं आएगी। तो हम उन प्रवृत्तियों में लगे रहें, वो चीजों में हम एक्टिविटी में लगे रहें जो लक्ष्य को मजबूत करने वाले। क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है मुझे जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बनाना। तो अपनी एक्टिविटीज को चेक करो, उपयोगी कितनी है, जरूरी कितनी है, लक्ष्य में मदद करने वाली कितनी है। फिर बहुत छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई हुई है, ये सारी बातें मन पर असर करने वाले जो भी परिबल है, एलिमेंट्स है, अन्न अन्न, भोजन, क्यों बाबा ने ये नियम दिया, अन्न शुद्धि, लक्ष्य पवित्र योगी जीवन का है, श्रेष्ठ जीवन का है, और हमारा खाना पीना शुद्ध ना हो तो हम स्वाद में चले जाएंगे, रस में चले जाएंगे, लक्ष्य में एकाग्र नहीं हो पाएंगे, फिर वो स्वाद खींचेगा, जाएं गोलगप्पे खाएं, फलाना खाएं, योग में भी याद आता है ना कई बार, स्वाद का असर होता है। क्यों बाबा ने कहा सादा सरल सात्विक भोजन, आज के वातावरण में, आज के आपकी जनरेशन में, कंपनी में आपका ये चीज थोड़ी पुरानापन लोगों को लगेगी, पर जरूरी है, सेफ्टी है। और मैं समझती हूं कि कोई को समझाने की अब आवश्यकता नहीं कि क्यों नहीं बाहर का खाना है, क्योंकि इतना भ्रष्ट मिलावट बनावट हो गया है कि हम सोच नहीं सकते। हम लोगों ने जिस समय, आज से 50 साल पहले जब ये धारणाएं जीवन में की, तब तो कोई मिलावट बनावट थी ही नहीं, पर भगवान ने कहा और हम लोगों ने किया। आज तो इतनी मिलावट बनावट है कि अपने आप करना चाहिए, है कि नहीं ऐसा? पहरवाइश हमारा ड्रेस, हमारा ड्रेसिंग सेंस, इसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है ना? जिस दिन आप अप टू डेट तैयार होते हैं, उस दिन आईने में कितनी बार देखेंगे? सिंपली बात है ना, अपने कॉन्शियस होते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस। नए कपड़े पहनो तो भी कॉन्शियस होते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान, कितना ऊंचा बाबा, कितनी ऊंची विद्यालय, उससे जुड़े हम और हमारी ड्रेस कैसी हो। बात ज्ञान संदेश दूसरों को पवित्र योगी जीवन बनाने का दें, और मेरे कपड़े है ना, बेशक स्वच्छ रहें, व्यवस्थित रहें, रॉयल रहें, पर मर्यादा पूर्ण रहे। ना हमें बॉडी कॉन्शियस बनना है, ना हमारी ड्रेस को देखकर दूसरा कोई बॉडी कॉन्शियस बने। क्यों ये करना है? बार बार रोज याद करो, बाबा के सामने बैठकर मुझे क्या बनना है। ये हमें रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक लक्ष्य है। दुनिया में किसी के पास ये लक्ष्य नहीं होता है। हमारा पढ़ना, पढ़ना माना समझ गए ना, फिर पढ़ने के कई साधन है। अब सिर्फ बुक्स नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है ना, व्हाट्सएप पर पढ़ो, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टीवी में, मैगजीन्स में, पर हम बुद्धि में कौन सा इनपुट दे रहे हैं, कौन सी बातें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट यहां जाता है ना सारा। हमने एक बात नोटिस की आज की जनरेशन में, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, रियलिटी तो आप जानते हैं, कि मुझे लगता है कि एक दो की तेरी मेरी इसकी उसकी बातें करने में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को ज्यादा अब, पर ऐसा वैसा इधर उधर का पढ़ के सुन के है ना, इनपुट कौन सा हम डाल रहे हैं। जैसे भाई घर में बैठे होंगे पर बात नहीं करेंगे, कोई हर कोई अपने मोबाइल में लगा होगा, इस रीति से मैं कह रही हूं। वो क्वालिटी पढ़ाई, हमारा पढ़ना सुनना देखना, स्पेशल जो पढ़ते हैं ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट ईमेल्स के द्वारा, या जो भी हम देखते हैं सीरियल्स, फिल्में, एक थॉट लाइफ बिगाड़ सकता है। कहते हैं ना, कई गुनेगारों का आपने पढ़ा होगा ना इंटरव्यू, कि फलानी फिल्म देखी थी उससे आइडिया आया कि ऐसे चोरी करे, ऐसे खून करे, ऐसा मतलब जो आजकल पाप कर रहे हैं, फलानी किताब से आइडिया मिला, फलानी फिल्म से आइडिया, एक थॉट लाइफ बिगाड़ देता है, एक अच्छा थॉट लाइफ बना देता है। तो हम रोज जो स्पेशल पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, है ना, एक एक भी मैं नॉर्मली देख रही हूं, सुन रही हूं, कर रही हूं, वो नहीं, वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, कान में लगा के रखते हैं ना आजकल, सुनते हैं, देखते हैं टीवी में, वो क्या है, वो कौन सा इनपुट है, क्वालिटी इनपुट है हमारा, वो होना चाहिए क्वालिटी। ऐसी बातें पढ़े ही क्यों, सुने ही क्यों, देखे ही क्यों, जिसको जीवन में हमें अपनाना ही नहीं है, तो हम उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। वरना लक्ष्य ढीला कमजोर हो जाएगा। तो जितनी ये सभी बातों की शुद्धि, उतनी एकाग्रता। क्यों पहले माना जो शास्त्रों में बताते हैं या प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य की स्थिति में पढ़ते थे, क्योंकि जितनी पवित्रता उतनी एकाग्रता, जितनी इम्प्योरिटीज इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतना आपका बुद्धियोग बिखरता रहेगा, मन भटकता रहेगा, व्यसन अन्न शुद्धि के साथ व्यसन का भी ध्यान रखना है ना। जिनको ज्ञान नहीं है वो तो क्या क्या व्यसनों के शिकार हो रहे हैं। एकाग्रता सिर्फ अभ्यास नहीं है, एकाग्रता रिजल्ट है, पर ये सारी चीजें जितनी शुद्ध और सात्विक ऑटोमेटिक एकाग्रता है, मेहनत की बात नहीं रहेगी, पुरुषार्थ की बात नहीं रहेगी। आपका माइंड अपने आप फोकस रहेगा, और खास आज के वातावरण में पर्टिकुलर अपवित्रता जिसको बाबा कहता है ना, काम वासना, देह या देहधारी का आकर्षण, अटैचमेंट, लगाव, झुकाव है ना, अपोजिट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चीजें हमें एकाग्र नहीं रहने देती। चाहे आप आध्यात्मिक ना हो तो भी नहीं रहने देगी। इसलिए हम बाबा के बच्चों को सच में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है तो ये सारी चीजें पवित्र शुद्ध सात्विक बनाने, और अपने आप जब लक्ष्य और जीवन पद्धति निश्चित हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, तो जो भी हमारी एनर्जीज है, विचार शक्ति, शब्दों की शक्ति, कर्म की शक्ति, चाहे समय, ये हमारी सारी खजाने हैं ना, बाबा ने दिए, हर एक को ये मिले हैं कुदरती, वो वेस्ट नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। और ये सूक्ष्म खजाने वेस्ट नहीं होंगे विचार वाणी कर्म समय के, तो अपने आप और जो स्थूल खजाने हैं, चाहे माँ बाप के तरफ से मिलते हैं, नौकरी करके आप कमाते हैं, वर्षे में मिलता है वो धन साधन जमीन जायदाद जो भी है, वो भी वेस्ट नहीं है। वो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं है। हम लोगों के समय में तो जेब खर्ची का सवाल ही नहीं था, वो स्टाइल ही नहीं थी, है ना। चलो आज के समय में वो चीजें हैं, पर अगर हम बाबा के बच्चे अपना जीवन का लक्ष्य और जीवन पद्धति स्पष्ट कर लेंगे तो एकाग्र भी होंगे और इकोनॉमी अपने आप हो जाएगी, और जब इकोनॉमी है तो एम्पावरमेंट है, जहां वेस्ट स्टेज जो है वहां एम्पावरमेंट नहीं है ना। आपके पास 100 रुपए की बचत है तो आप में पावर रहेगी कि मैं ये फल खरीद सकती हूं, मैं एक टाइम खाना खा सकती हूं। जितना जमा का खाता होगा उतना आप एम्पावर होंगे, और जमा का खाता तभी बढ़ता है जो बहन ने बताया ना कि कम खर्च करें, फिजूल खर्ची ना करें, लाइफस्टाइल सिंपल बनाए। पर वो ऐसे नहीं बनेगी, लक्ष्य निश्चित तो होने से बनेगी। फिर एकाग्रता प्रश्न नहीं है, है ना। कईयों को बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं फोकस नहीं हो पाती, मेरा एकाग्रता नहीं है मेरे में, वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। हम बाबा के बच्चे बहुत जल्दी एकाग्र हो सकते हैं, होते हैं। हमें रोज का अभ्यास भी है, है ना। रोज हम साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को एजुकेट करते हैं, रोज ट्रेन करते हैं अपने आप को, अंतर्मुखी बनते हैं, स्वचिंतन करते हैं, खुद में स्थित होते हैं। ये रोज की ट्रेनिंग है, खुद खुद को हम देते हैं। तो इजी रहेगा कि मुश्किल लगेगा? ये इस बार भट्टी के बाद डिसीजन क्लियर आ जाना चाहिए। हम कह सके माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को क्लियर बता सके कि मेरा ये लक्ष्य है ना। कई बार हम बताते नहीं है फ्रेंड्स को कि हम ज्ञान में चलते हैं। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम दो नाव में पांव वाले होते हैं ना, इसलिए हम ही डगमग है तो क्या बताएंगे, इसलिए छिपाते रहते। पर क्लियर है तो अपने आप हमारे जीवन से ही लोगों को भी पता चल जाएगा कि इनका लक्ष्य क्या है। और जब हमारी दृढ़ता का परिचय हो जाता है फिर वो आपको दुराग्रह भी नहीं करेंगे कि भाई ये नई फिल्म देखेगी, ये होटल में नहीं खाएगी। पर हम खुद कन्विंस होने चाहिए इन नियमों से, इस डिसिप्लिन से हम खुद सहमत होने चाहिए कि जो नियम मर्यादा बाबा ने बताई है वो कल्याणकारी है, लॉजिकल है, जरूरी है। अगर आप खुद कन्विंस है तो दूसरे को तो अपने आप हम कन्विंस सेकंड में कर देंगे। ठीक है, इससे संबंध में कोई प्रश्न है तो पूछ। चार मिनट है, उसके बाद हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। एकाग्रता और इकोनॉमी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ज्ञान से पहले भी मेरे लाइफ की ये डिसिप्लिन थी, एक मुझे कम से कम माँ बाप से लेना है, हम दे न सके पर कम से कम ले। मेरी इच्छाएं इतनी ना हो, मेरी शौक इतने ना हो कि माँ बाप को मुश्किल हो जाए। हमारी कोई चॉइस होती नहीं थी, जो मिले वो अच्छा है। हर कोई जानता है माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, बहुत हो तो भी मेरा अपना ये संयम रहता था कि मुझे कम से कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा देना है, रिटर्न करना है। और दूसरा, फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ये रहता था कि मुझे किसी का कुछ भी तब लेना है जब मैं उतना ही दे सकती हूं, तो नहीं तो नहीं। आया ना समझ में? मुझे कोई भी फ्रेंड्स के रिलेशन में भी वो ही लेना है या उतना ही लेना है जितना मैं रिटर्न कर सकूं।